لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने अपने कुछ मखसूस बंदों को इमाम बनाया है। किस लिए? यहदूना बे अम्रना, ताकि वो हमारे बंदों को हमारे अम्र की तरफ हिदायत व रहनुमाई करें, या हमारे अम्र की के साए में, हमारी अम्र की रोशनी में वो लोगों को हिदायत दें। अवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने उन्हें अच्छे कामों की वही की है। व इक़ामस सलात, नमाज को कायम करने की वही की है। व ईता अज़्ज़कात, और ज़कात को अदा करने। उनका एक अहम इम्तियाज़ ये है कि कानू लना आबिदीन, उनकी पहचान ये है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी बंदगी में सर्फ करते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो हमारी बंदगी से खाली हो। उनका वजह इम्तियाज़ हमारी बंदगी है। और खुदा बंदे आलम ने ये बंदे भेजे काहे के लिए? इनको इमाम बनाया ताकि वो हमारी हिदायत करें। उनकी ज़िम्मेदारी हिदायत देना और हमारी ज़िम्मेदारी हिदायत लेना, क्योंकि कोई मामूली बंदे नहीं थे। वो अर्शी मौजूदात थी जिन्हें खुदा ने फर्श खाक पर भेज दिया। इतना बड़ा एहसान खुदा ने किया। आप समझें कि हिदायत जहाँ एक इंसान के लिए हादी बनना सबसे बड़ी फजीलत है, वहीं हादी भेजना खुदा का सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ी नेमत है। खुदा बंदे आलम ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, मगर किसी नेमत पर खुदा ने एहसान नहीं जताया है कि हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें आंखें दे दी, हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें ये जो ज़बान दे दी, हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें अक्ल व खैरत से नवाजा। जबकि हर बार ये नेमत वो है कि एक एक नेमत वो है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी अजीम नेमतें हैं। मगर परवरदगार ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया सिवाय नेमत हिदायत के। जब नेमत हिदायत का बंदोबस्त किया तो खुदा कहता है लकद من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. احسان ہے خدا کو بھی لقد یقیناً, کلام میں زور پیدا کیا ہے نا, یقیناً خدا کا احسان ہے. وہ بھی کس پر احسان ہے؟ معمولی لوگوں پر نہیں, مومنوں پر احسان ہے. کیا احسان ہے؟ کہ ان کے درمیان رسول بھیجا, یعنی ایک ہادی بھیجا ان کے درمیان. کام کیا ہے اس کا؟ خدا کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے, نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ پورا نچوڑ جو نکالے, یعنی انسانوں کی ہدایت کرتا ہے, ان کو راہ راست دکھاتا ہے. جب اتنی عظیم نعمت دی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ہر نعمت کا شکر بجا لایا جاتا ہے نا. کفرانِ نعمت تو گناہ ہے. اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر ہے کہ اس کی باتوں پر کان دھریں, سنیں, سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اگر ہم نے ان کے راستے سے انحراف کیا, اگر ان کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے, ان کی تعلیمات کو نہ سمجھا, نہ سنا, نہ عمل کیا, ان کی تعلیمات کی مخالفت کا نام ہے گناہ. گناہ یہی تو ہے نا, جو دونوں تعلیمات دی ہیں, جو ہدایات دی ہیں, اگر ان کی ہدایات کو ہم نے نہ مانا, جہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑے ہو گئے, جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں بیٹھ گئے, جہاں بولنا تھا وہاں چپ ہو گئے, جہاں چپ ہونا تھا وہاں بولنے لگے, اسی کا نام تو گناہ ہے. جب اتنی عظیم نعمت کا ہم کفران کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا. گناہ کا انجام کیا ہے؟ عذاب. البتہ عذاب دو طرح کا عذاب ہے. ایک عذاب وہ ہے جو آخرت میں ہوگا, اور ایک عذاب وہ ہے جو اسی دنیا میں ہوگا. عذاب صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے, عذاب اسی دنیا کا عذاب ہے. گناہ کے نتائج, گناہ کے اثرات آخرت سے مخصوص نہیں ہیں. دعا کمیل پڑھتے ہیں نا, وہ چند اثر گناہ کا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصام, خدایا اس گناہ کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہم بے آبرو ہو جاتے ہیں, پردہ دری جس سے ہو جاتی ہے. بعض گناہ وہ ہیں جو ہماری رسوائی کا سبب بنتے, جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں. ایک انسان کو سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ عزت ہے, کیونکہ انسان سب سے زیادہ عزیز مال کو رکھتا ہے, اور مال سے زیادہ عزیز جان کو رکھتا ہے. مال حاصل کرنے کے جانے کیا کہ جتن کرتا ہے, کیسے کیسے مال حاصل کر لیتا ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر بیمار ہو گئے, صحت پر بن پڑی, تو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں کچھ؟ جتنا ضرورت ہوگی اتنا مال خرچ کرنے کو تیار. اگر ڈاکٹر نے $10,00,000 مانگ لیا اور ہے ہمارے پاس, یہ تو نہیں اچھا ہم کوئی بات نہیں بیمار رہیں گے مطلب علاج نہیں کریں گے, نہیں, $10,00,000 مانگ رہا ہے تو جو ہے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے قیمتی مال, اور مال سے قیمتی جان, اور جان سے قیمتی انسان کو عزت ہوتی ہے. کبھی کبھی عزت کی خاطر انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے. الموت اولى من ركوب العاری, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. لیکن بعض گناہ وہ ہیں جن کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے, انسان کی عزت و آبرو لٹ جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصام, بعض گناہ وہ ہیں جس سے انسان یہ جو ہے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام, بعض گناہ وہ ہیں جس سے نعمتیں, نعمت جو ملی تھی نہ صرف کہ چھن جاتی ہے, نعمت تبدیل ہو جاتی ہے نقمت میں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. बीमारी की शक्ल में बला आ जाती है, कभी दलदलों की शक्ल में बला है, तूफान की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लें हैं बलाओं की। तो ये वो गुनाह के आसार हैं जिनका ताल्लुक आखिरत से नहीं, इसी दुनिया से है। इसलिए इस्लाम में गुनाह को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई कि हम उससे बचें। बाद गुनाह वो हैं जिसकी बिना पर इंसान गुलामी की जिंदगी बसर करने लगता है। बाज गुनाह वो हैं जिसके बिना पर इंसान हाकिम के बजाय महकूम बन जाता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से हदीस है कि इन अल्लाह कजा कजा अन हतमा अल्लाह युनअमा अलल अब्द फयसलुबहा। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह का ये हतमी फैसला है कि खुदा जब किसी को कोई नेमत देता है तो उसे छीनता नहीं है, छीनता नहीं, जो नेमत दे दिया है खुदा छीनता नहीं है, ये उसकी उसका हतमी फैसला है। मगर एक मौका है जब वो नेमत छीन लेता है। इन्नल्लाह कजा कजा अन हतमा अल्लाह युनअमल अब्दा बिन नेमतिन फयसलुबहा नकमा, यहां तक कि बंदा कोई ऐसा गुनाह कर दे जिसकी बिना पर उसकी नेमत को खुदा छीन ले। तो खुदा नेमत देने के बाद छीनता नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो नेमत के छीन जाने का सबब बनता है। यहां वहां बैठ के आमतौर से हम लोग तजरिया करते हैं, वैसे करते हैं, आखिर क्या वजह है कि हर तरफ हम जूते खा रहे हैं, क्या वजह है कि काफ़ी हयात हम पर तंग हो गया है, दुनिया का कोई गोशा नहीं था मुसलमान इज्जत व आबरू से जिंदगी बसर कर रहा हो, जो है वो हमारे खून के दर पे है, हम जलील होकर के रह गए हैं। हर चीज का जायजा लेते हैं सवाए इस चीज का जायजा लें कि देखें कहीं हम किसी ऐसे गुनाह के तो मुर्तकिब नहीं हो गए हैं जिसकी बिना पर हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। क्योंकि अल्लाह इख्तदार देने के बाद छीनता नहीं है, अल्लाह हुकूमत देने के बाद छीनता नहीं है, अल्लाह सरदारी देने के बाद छीनता नहीं है। किसी जमाने में हमारे पास सरदारी थी, किसी जमाने में हमारे पास इख्तदार था, आज हम गुलाम क्यों बन गए हैं? हत्ता युहदिसल अब्दु ज़म्बन यस्तहिक्कु बिज़ालिका नक़मा। अल्लाह उस वक्त नेमत को छीनता है जब बंदा कोई ऐसा गुनाह कर दे जिसकी बिना पर इस अजाब का हकदार हो जाए कि अल्लाह इस नेमत को उससे छीन ले। तो गुनाह का मसला सिर्फ आखिरत का नहीं है कि देखा जाएगा वहां क्या होगा, बोलते ना देख लेंगे क्या होता है, देख वहां नहीं देखना, यही देखना है और देख रहे नहीं। इन अल्लाह कदा कदा अन हतमा। लिहाजा इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है इस बात के ऊपर गुनाह से बचने की। दो चीज़ है, सवाब करें कि गुनाह से बचें। कभी कभी हो जाता है ना, सवाब करें कि गुनाह से बचें। हजरे अस्वद को चूमें, धक्का दे के दूसरों को पीस करके, हैं होता है ना। अगर धक्का न देंगे, अगर इनको उनको कोहनी नहीं मारेंगे तो हजरे अस्वद तक पहुंच नहीं सकते हैं। वो हजरत अस्वद को चूमना बड़े शरफ की बात है, मैं कौन सा करें। मौला फरमाते हैं इज्तनाब सय्यात औला मिन इक्तसाब हसनात, गुनाहों से बचना कहीं बेहतर है नेकियों के हासिल करने से। ऐसा सवाब किस काम का, ऐसा सवाब किस काम का जो गुनाह की बुनियादों पर कायम किया जाए, जो गुनाह को बुनियादों पर कायम किया जाए। तो फरमाते हैं कि इज्तनाब सय्यात औला मिन इक्तसाब हसनात। हम सब खुदा से करीब होना चाहते हैं ना, कम से कम जबान से तो यही कहते हैं, दिल का भेद तो खुदा जानता है, कम से कम जबान से हम सब की यही ख्वाहिश है कि खुदा। नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुर्बतन इलल्लाह। रोज़ा क्यों रखते हैं? कुर्बतन इलल्लाह। हज क्यों करते हैं? कुर्बतन इलल्लाह। हर चीज़ में यही तो है ना कि अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह की कुर्बत हमें हासिल हो जाए। वो कौन सी चीज़ है जो हमें अल्लाह से सबसे तेज़ी के साथ करीब कर सकती है? वो कौन सा दरिया है जो खुदा की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता है? خود پروردگار موسیٰ سے خطاب کر کے کہتا ہے، یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی، اے موسیٰ جو لوگ ہم سے قریب ہوئے ہیں کسی چیز نے بھی ان کی قربت میں وہ کردار ادا نہیں کیا ہے جو گناہوں سے بچنے نے انجام دیا ہے۔ بہت سے اسباب اور فیکٹر ہوتے ہیں نا خدا سے قریب ہونے کے، خدا کہتا ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر، سب سے اہم عامل، سب سے اہم اور مؤثر سبب خدا سے تقرب کا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ شعبان کا مہینہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، آخری خطبہ ہے ماہ شعبان کا، اور فضائل ماہ رمضان پیغمبر خطبے میں بیان کر رہے ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں، اس میں سونا بھی جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، سانس جو ہے وہ تسبیح کا ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ مولائے کائنات کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اچھے کام تو بہت ہیں نا، سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ چونکہ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس میں سب سے اچھا کون ہے، ایک ایک کر کے چننے کے بجائے پورا 100 اکٹھا نہ لے لیں۔ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، ہم لوگوں سے کوئی پوچھے سب سے افضل عمل کون ہے، کوئی کہے گا یہ جو ہے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھنا، کوئی کہے گا نبی درم قرآن کی تلاوت کرنا، کوئی کہے گا روزہ تو رکھنا ہی ہے، واجب ہی ہے، اس میں تو کوئی انتخاب کی گنجائش تو ہے نہیں کہ چوائس کیا جائے، کوئی کہے گا افطاری دینا مومنین کو، کوئی کہے گا افطاری کھانا مومنین کے ہاں، اپنے اپنے حساب سے ہے نا، کوئی افطاری دینا چاہتا ہے، کوئی کھانا چاہتا ہے، کام ہے نا بھائی، کھانے والے ہوں گے نہیں تو کھلانے والوں کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، پیغمبر نے جو جواب دیا ہے بڑا عجیب جواب ہے، پیغمبر نے کچھ کرنے کو نہیں کہا، کچھ نہ کرنے کو کہا، یا پیغمبر پوچھا کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، پیغمبر نے فرمایا کہ افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل ماہ رمضان کا یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان چیزوں سے بچو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی وہی گناہ سے بچنا۔ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ گناہ ایک ایسا پوائزن ہے جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے، ایک ایسا جراثیم ہے گناہ جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے، اس کا نقصان آخرت میں بھی ہے، حتیٰ یہ ہے کہ نہ صرف گناہ نہ کرو، گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں، اگرچہ گناہ کے اگر سوچتے ہیں، گناہ کیا نہیں تو عذاب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن بہرحال جب فکر جو ہے مقدمہ عمل ہے نا، جب تک آپ سوچیں گے نہیں تب تک عمل تو ہوگا ہی نہیں، البتہ بات سوچے سوچ کی حد تک رہ جاتی ہیں، لیکن ہر عمل کے پیچھے ایک فکر تو ہوتی ہے، اب 5 منٹ کی فکر ہو، 5 گھنٹے کی فکر ہو، کتنا آپ نے تفکر کیا وہ الگ سی بات ہے، لیکن حق کی فکر تو ہے۔ کہتے ہیں ذہن کے مرحلے میں بھی نہیں آنا چاہیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ سیام الفکر عن الاعصام افضل من سیام المرء عن الطعام، ایک روزہ وہ ہے جس میں ہم کھانا نہیں کھاتے، یہ بھی روزہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ فکر کا روزہ پیٹ کے روزے سے کہیں بہتر ہے۔ کیا مطلب فکر کا روزہ؟ سیام الفکر عن الاعصام، فکر کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، ذہن کو، ذہن کے مرحلے ہی میں گناہ نہ آئے، جب ذہن کے جیسے جہاں فکر آئی جھٹک دیا ذہن کو، تو ظاہر سی بات ہے شیطان تو اپنا جو ہے وسوسہ کرتا رہتا ہے نا، لیکن وہ بھی ایک حد تک جاتا ہے، جب دیکھتا ہے نہیں یہ پھنسنے والا نہیں ہے تو شیطان اپنے ٹائم برباد نہیں کرتا، دیکھ لیجیے یہ پھنسنے والا نہیں ہے، جہاں اس نے حملہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حملہ ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جھٹک دیا، جھٹک دیا اس فکر کو، تو आहिस्ता 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 इंसान उस मकाम पे पहुंच जाता है कि फिक्र भी पाकीजा हो जाती है। अमल से तो मासूम होते ही ये फिक्र भी मासूम हो जाती है, फिक्र भी मासूम हो जाती है। या अगर कहूं कि अमलन तो आदिल है, फिक्र भी आदिल हो जाती है। मरहले अदालत का अगर इस्मत का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, सयामुल फिक्र यानी लासाम, या सयाम एक दूसरी रवायत में सयामुल कल्ब यानी लासाम अफ़ज़लु मिन सयामिल मर यानी ताम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जनाब ईसा की ज़बानी नकल फरमाते हैं कि इन्ना, जनाब ईसा ने अपनी कौम से कहा कि इन्ना मूसा अमरकुम अल्लाह तज़नु व अना आमुरकुम अल्लाह तुहद्दिसु अनफुसकुम बिज़्ज़िना। मूसा ने तुम्हें हुक्म दिया था कि देखो ज़िना मत करना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ज़िना के बारे में सोचना भी नहीं, ज़िना के बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद बड़ी खूबसूरत वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मन तहद्दस नफ्सहु बिज़्ज़िना कमन औक़दा नारन फी बैतिन मुज़व्वक फअफ़सदत दुखानु तदावीक व इन लम यहतरिक। जो इंसान गुनाह के बारे में सोचता तो है मगर गुनाह करता नहीं है, सोचता रहता है। बहुत से हैं ये जो है ज़हनी अय्याशी होती है ना, बहुत से लोग ज़हनी अय्याशी में जो है मुब्तला रहते हैं। वो जो आजकल नेट के ऊपर जो है ज़हनी अय्याशी चल रही है। जो इंसान जनाब ईसा के गुनाह के बारे में सोचता है मगर गुनाह करता नहीं है, ये उस शख्स के मानंद है जो एक ये डेकोरेटेड कमरे में, डेकोरेटेड घर में एक तसले में आग जला दे। तो आग महदूद है ना, कमरा जलेगा तो नहीं, लेकिन जो धुआं उठेगा सारा डेकोरेशन जो है वो फासिद और तबाह हो जाएगा। रंगो रोगन जो किया हुआ था ना, सबके ऊपर धुआं बैठ जाए, घर जला नहीं मगर डेकोरेशन खराब हो गया। भैया फरमाते हैं कि जो इंसान गुनाह के बारे में सोचता है मगर गुनाह नहीं करता है, उसकी मिसाल भी ऐसे ही है, कल्ब आलूदा तो हो गया, आईने दिल पे गुबार तो आ ही गया। जब आईने दिल पर गुबार आ ही जाएगा तो फिर हकायक की तस्वीर नजर तो आएगी मगर धुंधली धुंधली, मगर धुंधली धुंधली नजर आएगी तस्वीर। ज्यादा यहां तक है गुनाह के बारे में इंसान को सोचना भी नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि बहाने होते हैं, साहब अब ये गुनाह न करें, गोया आप आज़ादी छीनना चाहते हैं हमारी। गुनाह न करें सलबे आज़ादी है ना, अब गया गुलामी का दौर, ये आजादी का दौर है। भूल गए कि किस चीज से आजादी। आजादी दो तरह की है, एक दफा नफ्स से आजादी, एक दफा अकल से आजादी। देखिए दो आजादी एक वक्त नहीं मिलेगी, या नफ्स से आजादी ले लीजिए या अकल से। अगर नफ्स से आजाद तो अकल के गुलाम, और अगर अकल से आजाद तो नफ्स के गुलाम। दो आजादियों में से एक आजादी मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। अगर खुदा से आजाद हो जाएंगे तो बंदगाने खुदा के गुलाम बन जाएंगे, और अगर बंदगाने खुदा से आजाद खुदा के गुलाम बन जाएंगे तो बंदगाने खुदा से आजाद हो जाएंगे। आजादी हमारी छिन जाती है, आजादी छिन जाती है। आजकल आजादी का जमाना है, बड़ा ये जो है मुकद्दस लफ्ज़ है ना, अलबत्ता फ़कत ज़बान की हद तक। अपनी आज़ादी अच्छी है दूसरों की नहीं, आज़ादी अपने लिए अच्छी है दूसरों के लिए आज़ादी नहीं है। इज्जत अपनी अच्छी है दूसरों की नहीं, दूसरों के साथ आप कोई भी बर्ताव कर ले, कितना ही जलील कर ले, कोई बात आपको कोई जलील ना करने पाए, आपको कोई जलील ना करने पाए। तो बहाने होते हैं कि साहब वो आज़ादी छिन जाती है, ये ना खाओ वो ना पियो, ज़िंदगी अजीरन करके रखा इन मौलवियों ने तो, जीने नहीं देते भाई। हाँ ये हराम है, ये सबीहा नहीं है, ये फला नहीं है, ये ढका नहीं है, सुबह से शाम तक वो इनके कुछ ना कुछ नखरे होते ही रहते हैं, ये ना करो ये ना करो ये ना करो, इंसान को जीने दो। अच्छा अगर शरीयत को हटा ले फिर आप आज़ाद हो जाएंगे, है आज़ादी आपको? नहीं, पाबंद तो आप फिर भी रहेंगे, क्योंकि कानून शरीयत तो एक जंजीर है, कई जंजीरें आपके कदमों में पड़ी हुई हैं। कानून फितरत से कहां भाग के जाएंगे, कानून फितरत से भाग सकते हैं? 10 मंजिला इमारत में बैठे हुए हैं, हम भी बैठे थे, कबूतर भी बैठा था। एक दफा हमने देखा कबूतर उड़ा चला गया सामने वाली इमारत पे, हमारा जी चाहा कि हम भी वहां चले जाए, तो हमने कदम आगे बढ़ाया, मौलाना ऐसे नहीं, वो सीढ़ी से नीचे उतरिए फिर चढ़िए फिर वहां पहुंचिए। क्या बकवास करते हो, हम क्या कबूतर से कम है? कबूतर तो सीढ़ी पर ही चढ़ा था, हमें तो सीढ़ियों का पाबंद क्यों बना रहे हो? हम भी ऐसे ही जाएंगे। कदम बढ़ाया, इधर कदम बढ़ाया नहीं, उधर कानून ने जाज़िबे जमीन ने खींच के पटक दिया जमीन के ऊपर, हड्डियां चकनाचूर हो गईं। का ये है उसकी सजा जो कानून से आजाद होना चाहता है। आप कानून शरीयत से आजाद हो जाइए, कानून तबीयत से भी आजाद हो जाएंगे, कानून सेहत से भी आजाद हो जाएंगे। मीठा बहुत अच्छा लगता है, हलवा खाए बगैर चैन नहीं आता, मगर डॉक्टर ने मना किया है, नहीं साहब आप तो शुगर पेशेंट हैं, आप तो नहीं खा सकते हैं। है हिम्मत आजादी की, हार्ट अटैक हो चुका है, बेहतरीन दिल्ली की नहारी रखी हुई है, दिल्ली का कौरमा रखा हुआ है जिसके ऊपर 2 इंच चिकना ऊपर तैरता है, उसके बगैर काम ही नहीं चलता। पसंद अच्छा होता है, बोलता है केदार अच्छा लग रहा है ना, खाएंगे। कानून सेहत इजाजत नहीं दे रही है, कानून ममलिकत वो पाबंद तो होना पड़ता है। ऐसा जकड़ते हैं बेल्ट में, है हिम्मत आजादी करके दिखाइए, नहीं मानते हैं, आजाद रहेंगे, जकड़ देंगे तुम्हें जंजीरों में। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीदा है, तेज रफ्तार गाड़ी है माशाल्लाह, भगाने को चाहता है, रेड लाइट हो गई, तोड़िए। अब तो आजाद होना चाहते थे ना, कहां कहां आजादी देखेंगे? कानून फितरत की पाबंदी, कानून सेहत की पाबंदी, कानून हुकूमत की पाबंदी, कानून माशरत की पाबंदी। और अगर शरीयत को आप देखेंगे तो शरीयत में तकरीबन 3/4 तो यही चीजें हैं। शरीयत भी कहती है कि कानून सेहत की मुखालफत हराम है, शरीयत भी कहती है कि कानून फितरत की मुखालफत हराम है, शरीयत भी यही कहती है, और क्या कहती है? तो आप जिस आजादी का बहाना बना करके गुनाह करना चाहते हैं, कानून खुदा को पामाल करना चाहते हैं, कहां वो आजादी मिली भाई? काश आजादी मिल गई होती तो लंबी समझते कि ठीक है भाई चलो एक बहाना है गुनाह करने का। लेकिन यहां मुश्किल तो ये है कि शरीयत को पामाल भी किया, अदाब इलाही के मुस्तहक भी करार पा गए, उसके बाद भी आजादी न मिली, उसके बाद भी हमें आजादी न मिली। लिहाजा ये बहाने जो हैं वो बेकार हैं। बहरहाल बहुत सारे गुनाह वो हैं जिनका मुआखजा इसी दुनिया में है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हदीस में जिसको इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने नकल किया है, 5 ऐसे गुनाहों को बयान किया है जिसका नतीजा इसी दुनिया में नजर आएगा। पैगंबर फरमाते कि खम्सुन इन अदरकतुमुहुन्ना फतअव्वज़ू बिल्लाहि मिन्हुन्ना। 5 गुनाह ऐसे हैं कि जब भी तुम्हारे सामने वो आ जाएं तो अल्लाह से पनाह मांगना उसकी। न सिर्फ ये कि तुम खुद वो गुनाह न करना, बल्कि अपने को उस गुनाह, बल्कि दूसरों को भी उस गुनाह से दूर रहने की नसीहत करना। बस दफा कहा जाता है कि भाई दूसरे के मामले में हम कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले, वो करता है वो जाने, ना हमारी कब्र में वो आएगा ना उसकी कब्र में हम जाएंगे। अव्वल तो ये जुमला ही गलत है, वो हमारी कब्र में आएगा हम उसकी कब्र में जाएंगे। कब्र में जाएंगे यानी उसके बारे में सवाल हमसे भी होगा और हमारे बारे में सवाल उससे भी होगा। और दूसरी बात ये है कि ठीक है उसके वो काम जिसका ताल्लुक हमसे ना हो उसके बारे में टांग अड़ाना तो शायद वो, आप किश्ती में सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में जा रहे हैं, एक शख्स है उसने अपना एक रूम बुक करा लिया, उसके बाद ये जो है वो भारी जो है ड्रिल मशीन लगा के सुराख कर रहा है, सुराख कर रहा है उसमें, क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब मेरा कमरा है, मैंने इसके पैसे दिए हैं, तुमसे क्या मतलब? खामोश होकर बैठ जाएंगे आप, ठीक है भाई हमसे क्या मतलब? नहीं, जितने किश्ती के सवार सब आएंगे, तुम्हें हक नहीं है, इसलिए कि यहां पर यह मसला फकत तुमसे मुतालिक नहीं है। सुराख होगा, पानी आएगा, तुम डूबोगे, तुम्हारे साथ हम भी डूबेंगे। दादा कोई उसमें गुनाह ऐसा ही है, गुनाह एक ये जो है वायरस है, गुनाह एक वायरस है, सरायत करता है एक दूसरे को। जुकाम नजला किसी को हो जाता है, यहां तो बहुत पाबंदियां लगती है ना, फिर तो नहीं आने देते। नहीं नहीं भाई देखिए आप यहां भाई ये मत कीजिए, वो मत कीजिएगा, होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से पैगंबर फरमाते कि खमसुन इन अदरक तुमुहुन्ना फतअव्वज़ू बिहा फतअव्वज़ू बिल्लाह मिनहुन्ना। खुद भी बचना, दूसरे को बचाने की तुम्हें कोशिश करना है। वक्त कम रह गया, शायद मैं 5 को आज बयान न कर सकूं। एक जुमला अलबत्ता यहाँ कह देना, कल भी मैंने इशारा किया था कि जहाँ पर उस कुरान मजीद की आयत में कि ये ज़रू ज़ाहिर इसमें, तुम परहेज करो ज़ाहिरी गुनाह से भी और बातिनी गुनाह से भी। इन्नल्लज़ीना यक्सबून अल इस्म, जो लोग हासिल करते हैं गुनाह को, हासिल करना इस बात की दलील है कि हम गुनाह के सिलसिले में मजबूर नहीं हैं। कि कल इशारा मैंने किया था कि नज़रिया जब पैदा हुआ कि मुझे नहीं, हम बंदे को तो करना ही करना है, मजबूर महज है। एक साहब के दरख्त पर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने फल खाना शुरू कर दिया। बिला पूछे पाछे मालिक आ गया, कहा क्यों खा रहे हो? कहा मशीयत खुदा यही है, मशीयत खुदा ये, खुदा ने चाहा हम चाहे, खुदा ना चाहता तो हम जा पाते ऊपर, मशीयत खुदा ये थी। उसने भी उठाया लाठी पीटना शुरू किया, कहा मार क्यों रहे हो? कहा मशीयत खुदा ये है, खुदा अगर ना चाहता तो तुमको हम मार पाते। मशीयत खुदा ये हम तुमको मारे, पिटाई करें, सारा भूत उनका जो है वो जबर वाला उतर गया। तो खमसुन, 5 चीजें हैं। पहली चीज क्या है? पैगंबर इस्लाम पहली चीज जो बयान फरमाते हैं वो ये है कि लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन हत्ता युलनूहा इल्ला ज़हरा फीहिम अल औजाउल्लती लम तकुन फी असलाफिहिम। जब भी किसी कौम में फहशा और बदकारी अलनी हो जाए, जब भी किसी कौम में बदकारी और फहशा अलनी हो जाएगा तो खुदावंदे आलम उनके दरमियान ऐसी बीमारियां फैला देगा जिसका पहले कोई जो है रिकॉर्ड नहीं था। पहले इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी। एड्स की बीमारी कब थी पहले? आज उमूम होती जा रही है ना। जिसको देखिए क्या है, ये जो है डिप्रेशन में है साहब, कब इतना होता था? इक्का दुक्का कोई केस मिलता था, अफसुर्दगी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। क्या हो गया भाई? जब फहशा अलनी हो जाएगा, बदकारियां अलनी हो जाएंगी तो उनके दरमियान ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी जिसका नमूना पहले मौजूद नहीं होता था। आज नमूना नजर आ रहा है। उसके बाद फरमाते हैं दूसरा गुना, लम यनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना इल्ला उखेजु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जबर सुल्तान। जब कभी लोग नाप तोल में कमी करने, ये जो है डंडी मारने लगेंगे। डंडी से मारने से मुराद फकत वो बनिया नहीं है, किसी चीज में भी डंडी मारना। टीचर को पढ़ाने के लिए दिया गया, वो ठीक से नहीं पढ़ाता, डंडी मारना है ना। खतीब मिंबर पे आया, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, ये भी क्या है? बहला के टहला के चला गया, ये क्या है? डंडी मारना तो है भाई। लोगों ने अपना वक्त, अपना टाइम, अपना सरमाया सर्फ किया, इतने सारे पढ़े लिखे लोग आकर के बैठ गए, आपने क्या दिया? ये वही है, ठंडी मारना है। ठंडी मारना फकत ये नहीं है कि दूध वाले ने अगर कम नाप के दे दिया, बनिए ने कम तोल दिया, तो फकत वही है। नक्शे में किया यानी अपनी जिम्मेदारियों को न निभाना, जिम्मेदारियों में कोताही करना, जो ड्यूटी हमारे जिम्मे है अपनी ड्यूटी को सही तरीके से न निभाने का नाम है नक्शे मिकयाल और मीज़ान। अगर लोग डंडी मारेंगे तो उखेदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जबर सुल्तान, तो उनका अंजाम यह होगा कि जाबिर सुल्तान के जुल्म सितम का शिकार हो जाएंगे, जिंदगी उनके ऊपर तंग हो जाएगी, दौलत तो कमाई जा रही, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। जितना वे कमाते हैं उतना वो कमी होता है, पेट भरते ही नहीं, चित्तथिल मऊना पेट नहीं भर रहा है। तनख्वाह कितनी, तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, इनकम कितनी, इनकम तो बहुत अच्छी है, जाता कहाँ है, बरकत जिंदगी से उठ जाएगी, बरकत जिंदगी उठ जाएगी। लम यमनउ ज़कात इल्ला मुनिउल मतरा मिन अस्समा, जब लोग खुम्स ज़कात को अदा करना छोड़ देंगे तो आसमान से बारिश से महरूम हो जाएंगे, खुशहाली फैल जाएगी। आप लोग कहते हैं हम तो देखते हैं कि जो लोग ज़कात वक़ात नहीं देते उनके ज्यादा बारिश होती है। यूरोप वाले कब ज़कात देते हैं, अमेरिका वाले कब ज़कात देते हैं, कितनी बारिश होती है, पानी पानी है, खुशहाली तो आप क्या है, क्या तो पानी पानी है। मसला ये है कि देखिए ऑफिस में आप जॉब करते हैं, अगर आप लेट आए आपसे सवाल जवाब होगा ना, कहाँ थे, क्यों देर में आए, या नागा कर लिया आपने। लेकिन जिन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, बाहर टहलते रहते, उनसे भी कोई पूछता है, उनसे सवाल होता है, मुआखजा किससे होता है, पनिशमेंट किसके लिए, तनख्वाह किसकी कटेगी, जो नौकर हैं ऑफिस के, मुलाजिम हैं, जो मुलाजिम हैं ही नहीं, जिनका ताल्लुक ही नहीं है ऑफिस से, उनकी भी तनख्वाह कटेगी, मुआखजा उनसे भी होगा, सवाल जवाब उनसे भी होगा, पनिशमेंट उनसे होगी। खिताब मोमिनों से है जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, जिन्होंने इस्लाम को कबूल ही नहीं किया है उनका चैप्टर अलग है, बंद है, उनके साथ बर्ताव कुछ और होगा। आपसे खिताब है, आपने कबूल किया है इस्लाम को, इस्लाम को जब कबूल किया है यानी जॉब आपने कर ली ना, ज्वाइन कर लिया है, आपने ज्वाइन कर लिया है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो बहरहाल पनिशमेंट भी आप ही के लिए, दूसरे के लिए थोड़ी है। लम यमनउ ज़कात इल्ला मुनिउ अल मतर मिन अस्समा, चौथी चीज फरमाते हैं पैगंबर, लम यनकुज़ु अहद अल्लाह व अहद रसूल इल्ला सल्लत अल्लाह अलैहिम अदूवहुम, जब लोग अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ देते हैं तो अल्लाह उन पर उनके दुश्मनों को हाकिम कर देता है। अहद खुदा क्या है, अमीरुल मोमिनीन अहद खुदा हैं, अमीरुल मोमिनीन अहदे खुदा हैं। जब लोगों ने अहदे खुदा की मुखालफत किया, मौला ने अपनी शहादत के आखिरी लम्हात जो बचे थे कहा था तुमने हमारी कदर नहीं जानी, मैं तो जा रहा हूं, गुलाम सकीफ तुम्हारे ऊपर आकर के हुकूमत करेगा, उस वक्त तुम हमें याद करोगे। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी जब आया है क्या अंजाम हुआ है इन्हीं कूफे वालों का, जिन्होंने अली को खून के आंसू रुलाए थे, इराक का क्या अंजाम हुआ, बसरा साहेब जंज के जमाने में क्यों कत्लेआम हुआ है। वक्त नहीं है कि साहेब जंज के वाकयात को बयान करूं। फरमाते हैं कि अगर तुम अहद खुदा को तोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दुश्मनों को हाकिम कर देगा। ये वो गुनाह हैं जिनके असरात आखिरत में तो होना है, बताइए सारी सजा नहीं है, ले नजी कहूं बाजी आमेलू थोड़ा सा है, लहोम खिजियन लहोम फिर दुनिया खिजियन व लहोम फिल आखिरत अजाब अजीम, दुनिया में भी रुसवाई आखिरत में तो अजाब अजीम है ही, तो फकत एक नमूना है सजा का। वलम यहकुमू बिमा अंजलल्लाह इल्ला जालल्लाहु बासहुम फीहिम, अगर ये हुक्म खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारेंगे तो अल्लाह उनकी ज़िंदगी को अजीज़न बना देगा। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन तनका, है ना, कमा रहे हैं, दौलत भी है, सब कुछ आ रही है, लेकिन सुकून नाम की चीज़ नहीं है। मामलात हल ही नहीं हो रहे हैं, ना शौहर बीवी से खुश है, ना बीवी शौहर से खुश है, वो उनकी शिकायत चुपके चुपके, वो उनकी शिकायत चुपके चुपके, वो उनके खिलाफ झगड़ा अलनी खुल बात का मरहला आता है ना। बाप बेटे के ताल्लुकात सर्द हैं, वो गर्मी जो होना चाहिए, वो हरारत जो होनी चाहिए, इनके ताल्लुकात वो कायम नहीं हो रहे हैं। घर घर नहीं रह गया है, घर कोई जो है मस्कन कहा जाता था ना, मस्कन यानी सुकून की जगह, मस्जिद सजदे की जगह, मस्कन सुकून की जगह। आज लोग भागते हैं घर से, क्यों? मन लम यहकुम बेमा लम यहकुम बेमा अंदलल्लाह, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये है, बेहतरीन नमूना गुनाह करने की बिना पे तबाही का, दुनिया में अजाब का शिकार ये जो है बनी उमैया हुआ। क्या अंजाम हुआ बनी उमैया का? बड़े जुल्म किए, बड़े सितम किए, बड़ी नाफरमानी की, बड़ी सरकशी की, अंजाम क्या हुआ? लेकिन जिन लोगों ने अपने को हमेशा से गुनाहों से दूर रखा, हमेशा गुनाहों से दूर रखा, सिर्फ एक ही चीज़ उनकी निगाह में होती है, खुदा क्या कहना चाहता है, एक चीज़ फ़कत, खुदा क्या चाहता है, बस। खुदा ने उनको कितना नवाजा, कितना नवाजा। लोग शोहरत और इज्जत के लिए कितनी दौलत खर्च कर देते हैं, एक पैसा खर्च नहीं कि आज पूरे ज़माने में उनकी शोहरत है, आज पूरे ज़माने में उनका मकाम है। एक मुहर्रम को चांद निकल आता है, लोग चूक तो चूक। अगर हुकूमतें अपना सारा खजाना खर्च कर दें इतना बड़ा मजमा जमा करने के लिए, पूरी दुनिया में जमा नहीं हो सकता। ये इनाम है हुक्म खुदा पर चलने का, अल्लाह के कोई मामूली जुमला तो इमाम हुसैन ने नहीं कहा था ना, अभी अर्ज़ किया था मैंने मजलिस में कि जिस वक्त शिमर सीने पर सवार है, तहे खंजर गले पर खंजर रखा है हुसैन, रुखसार अपना ज़मीन पर रख करके कहते हैं रजन बे रजाक, रज़ाल्लाह रज़ाना अहलिल बैत, जो अल्लाह की मर्जी वो हमारी मर्जी। हम अल्लाह से हटके तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। उन्होंने अगर अपना सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान किया, सारी तवज्जो इस बात पे होती थी कि खुदा क्या चाहता है, बस बकिया हम पर क्या गुजरेगी इसकी फिक्र नहीं है। खुदा हमसे क्या चाहता है, जो खुदा हमसे चाहता है उसे हमें देखना है। पूरा पूरी करबला की अजमत ही इसी में है। मदीने से मक्का, मक्के से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, करबला से मदीना, ये पूरा सफ़र इसको देख लें आप। इस काफिले की कोई फर्द ऐसी नहीं है जिसने मर्जी खुदा के सिवा कुछ और सोचा हो, मर्जी खुदा के सिवा कुछ और सोचा हो। खुदा की मर्जी के खातिर, खुदा की हुक्म के खातिर हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार, हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। मामूली मुसीबतें अहले बैत ने बर्दाश्त नहीं की हैं, कि मामूली मुसीबत कोई रही हो। अजीजो, उसको जब सामना करना पड़ता है उन लोगों से कि कल जो हमारे मातहत थे आज हम उनके सामने रसन बस्ता खड़े हों, जिस वक्त यजीद के दरबार में जनाब ज़ैनब लाई गई तो क्या कहा, जब न तुलका अमिनल अदल, तुम तो वही हो ना जिन्हें हमने आज़ाद किया था, तुम हमारे आज़ाद किए हुए की औलाद हो। जब न तुलका अमिनल अदल, चूँकि यजीद ने वहाँ पर्दा टांग रखा था कि जहां अपने घर की खवातीन को पर्दे के पीछे रखा था, और अहले बैत मुस्तफ़ा रसन बस्ता भरे दरबार में खड़े हुए थे। क्या ये इंसाफ है कि तूने अपनी औरतों को तो पर्दे में छुपा रखा है और दुख्तरान पैगंबर, औलाद पैगंबर, अहले बैत पैगंबर जो है रसन बस्ता बेहिजाब बेचादर تماشائیوں کے سامنے انہیں رکھا ہے. امن العدل یبن الطلقاء. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے دربار شام میں امام سجاد کا وہ مشہور خطبہ مسجد اموی میں, جمعہ کا دن ہے, نماز جمعہ ہونی ہے, خطیب منبر پہ گیا ہے. خطیب منبر پہ جانے کے بعد وہ کلمات کہے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں جس کا مستحق یزید اس کا باپ اور اس کا دادا تھا. برے الفاظ سے اہل بیت کو یاد کیا ہے. جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو ایک دفعہ سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑی کو سنبھالتے ہوئے ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہیں. زنجیروں کی جھنکار میں ایک دفعہ سید سجاد کا ایک جملہ گونجتا ہے, ایہا الخاطب اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق. تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. اہل بیت وہ ہیں جن کا کام کیا ہے, خدا کو راضی کرنا. تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. فتبوا مقعدک من النار, اب تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں ہے. اس کے بعد یزید سے امام سجاد کہتے, یا یزید اعذن لی حتی اسعدا علی ھذہ الاباد و اتکلم بکلمات تکون لھذہ الجلساء اجر و ثواب وللہ رضان. اے یزید مجھے بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دے, ممبر نہیں کہا ہے, جہاں سے حق نہ بیان ہو وہ ممبر کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. ان لکڑیوں کے ڈھیر پر مجھے بھی جانے کی اجازت دے تاکہ میں ایسی باتیں کہوں سننے والوں کو ثواب ملے اور خدا خوش ہو جائے. اس موقع پر بھی امام سجاد کی توجہ یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے, اپنا دفاع نہیں کرنا ہے, خدا کو راضی کرنا ہے, رضائے خدا بندی. یزید اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن مجمع میں لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں کیا ہے, ان کو بھی آنے دو, تھوڑا تفریح کا سامان ہی ہوگا. کیونکہ جو تعارف کرایا گیا تھا اہل بیت کا, یہ خارجی ہیں. کب بتایا گیا تھا کہ یہ آل محمد ہیں, جو ان کے کمالات ہیں, جن اہل بیت کی تطہیر کا طہارت کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا, یہ وہ یہی لوگ ہیں. کوئی کہتا جانے دے جانے دے, کیا بولیں گے. ایک وہ انسان جس کا سارا گھر اجڑ چکا ہے, جس کے سارا خاندان شہید کیا جا چکا ہے, جس کی گھر کے عورتیں رسن بستہ در بدر پھرائی جا رہی ہیں, ایسے انسان کا تو حوصلہ ایسے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے نا. اگر کچھ آتا بھی انسان بھول جاتا ہے. آئیں گے کیا بولیں گے, من من کریں گے, چار باتیں ممبر سے کہیں گے, اتر آئیں گے نیچے. مگر یزید جانتا ہے نا یہ کون ہیں. چھپا تو لیا تھا لیکن اب پھنس گیا ہے, اپنے جو ہے پروپیگنڈے کے جال میں خود ہی پھنس گیا ہے. ہاں 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 اجازت دے دے. یزید کہتا جانتے نہیں یہ کون ہیں. انہم من اہل بیت ذق العلم ذقا, یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں علم بھرایا گیا ہے, یہ اس خاندان کی فرد ہیں. اذا سعدا لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان, اگر یہ ممبر پہ چلے گئے تو مجھے اور آل ابو سفیان کو ذلیل کیے بغیر نیچے نہیں اتریں گے. ان کا جانا, لیکن یہ مجمع کا اصرار بڑھا, پریشر بڑھا, مجبور ہو گیا. امام سجاد کو اجازت دی گئی. امام سجاد آنے کے بعد اپنا تعارف کراتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں سارا خطبہ آپ کو پیش کروں, کہا جملے صرف. پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں, میرا نانا کون تھا, میرا بابا کون تھا, میری ماں کون تھی, میری نانی کون تھی, ایک ایک کا تعارف کراتے ہیں. انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن خدیجہ الکبرا, میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں, میں خدیجہ کبرا کا فرزند ہوں. اس کے بعد حسین کا تعارف کراتے, انا ابن قتیل الکربلا, انا ابن من ذبح عن القفا, میں حسین کا فرزند ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا. انا ابن العطشان حتی قضا, اس پیاسے کا بیٹا ہوں جسے مرتے دم بھی پانی نہیں دیا گیا. انا ابن ترائح کربلا, میں حسین کا بیٹا ہوں جسے سرزمین کربلا پر بے غسل و کفن چھوڑ دیا گیا. انا ابن
مسلوب العمامت والردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن کا کپڑا بھی اتار لیا گیا۔ امام سجاد کا یہ بیان سن کر کے مجمع میں کوہرام مچ گیا، ہر شخص یزید پر لعنت بھیجتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے کو گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ بار الہ ہمیں ایسی زندگی دے جو گناہوں سے پاکیزہ ہو۔ معبود ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرار اور زائرین سید و شہداء کی حفاظت فرما۔ معبود مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم امام کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه و انصاره۔